ही फायदा हो सकता है। हाँ हो सकता है, हमारे ऊपर सातों की सातों बातें लागू होती हैं और वो सही हैं।
अथर्ववेद ने गायत्री मंत्र के बारे में सात लाभ बताए हैं। पहला, आयु अर्थात दीर्घ जीवन प्रदान करती है।
हाँ बेटे, हमारा जीवन बहुत लंबा है। क्या जीवन है, कहने को तो 70 साल होने को आते हैं, पर असल में हमारे भीतर 5 आदमी काम करते हैं और 5 आदमी मिला करके हम एक आदमी हैं। हम 350 वर्ष के आदमी हैं। 350 वर्ष कोई आदमी जिए और उतने समय में जो काम हो सकता है उतना हमने एक जीवन में कर डाला है। हमारा एक आदमी लिखता रहता है, जितना हमने लिखा है वह बहुत ज्यादा है।
व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। व्यास जी ने वेद नहीं लिखे, केवल पुराण लिखे।
बेटे, हमने 18 पुराणों के अनुवाद किए हैं, हमने वेदों के अनुवाद किए हैं जो व्यास जी ने नहीं लिखे।
सारी जिंदगी भर की कमाई उनके पुराण थे।
हमारी जिंदगी की कमाई उनसे ज्यादा है।
हमारे 5 शरीर, एक आदमी ने 50 वर्ष की जिंदगी में 8 वर्ष तक लिखा, बहुत लिखा।
यह हमारे 8 वर्ष से कम का लेबर नहीं है। हमारा एक आदमी बिल्कुल लिखता रहता है और दूसरा कोई काम नहीं करता। हमारा एक आदमी संगठन करता रहता है। आदमी के भीतर 5 कोश होते हैं, हमारा एक कोश दूसरा काम संगठन का करता है। कितना बड़ा संगठन है।
मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में यह पहले नंबर का संगठन है।
कहने को तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संगठन में बुलाती हैं, एक दिन बनाती हैं और दूसरे दिन खत्म हो जाती हैं।
कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप खत्म हो गई तो जनता पार्टी की मेंबरशिप चालू हो गई। अभी जनता पार्टी की मेंबरशिप चालू है, कोई और पार्टी अगले साल तक आ जाएगी तो वह खत्म हो जाएगी।
बेटे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। हमने इतना बड़ा संगठन बनाया जो हिंदुस्तान से लेकर सारे संसार में फैला हुआ है। सारे संसार में यह सबसे बड़ा संगठन है। संगठन बनाने में कितनी शक्ति खर्च होती है आप समझते नहीं।
हमारे एक आदमी ने संगठन बनाया, संगठन को कायम रखा, संगठन को धागे में पिरोया।
अच्छे आदमियों को चुन चुन करके धोया है और धो करके धागे में पिरोया है। एक आदमी का यह जिंदगी भर का काम है। यह काम एक आदमी मुश्किल से कर सकता है, पर हमने 50 साल में कर लिया है।
मित्रों,
हमारा एक शरीर इतने बड़े कुटुंब की देखभाल करता है। हमने इतना बड़ा कुटुंब पकड़ लिया है। इस कुटुंब के बच्चों की देख घटाव भाल रख रखाव करनी पड़ती है। इन बच्चों के लिए गुब्बारे लाने पड़ते हैं, टॉफी चॉकलेट लाने पड़ते हैं,
इनको फीस देनी पड़ती है, इनको खिलौने लाने पड़ते हैं।
ये बच्चे जब मुसीबत में आ जाते हैं तब हमारी ओर आंखें पसार कर देखते हैं।
हमारा पिता समर्थ है और हमारा बाबा समर्थ है, हमारी यह अवश्य सहायता करेंगे।
बेटे, हम बच्चों को कैसे नाउम्मीद कर दें, हम नहीं कर सकते। आपको हम धमकाते तो कई तरीके से हैं कि आपको स्वावलंबी होना चाहिए,
आप में भिक्षावृत्ति नहीं होनी चाहिए,
पर हम क्या कर सकते हैं।
बालक तो बालक हैं और बुजुर्ग बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग के भीतर शालीनता होती है और जिम्मेदारी होती है।
बच्चे की सहायता करना उनका काम है, आपकी हम सहायता करते हैं। सहायता के लिए लाखों आदमी आंखों में आंसू भर करके हमारे पास आते हैं। हमसे देखा नहीं जाता, हमारे पास जो कुछ भी होता है उस कमाई में से हम उनकी सहायता करते हैं।
मित्रों,
सहायता न करें ऐसा हमसे नहीं हो सकता और न आज तक हमने ऐसा कभी किया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने हर किसी को दिया है, किसी आदमी को हमने खाली हाथ नहीं जाने दिया अपने दरवाजे पर से। हमारे हिस्से में थोड़ा आया होगा, ठीक है, पर उसका प्रारब्ध ज्यादा फायदा न कर सका होगा, यह भी हो सकता है। हर एक की मनोकामना पूरी करने में हम समर्थ न हो सके होंगे, यह भी सही है, लेकिन बेटे हमने दिया हर एक को है। ऐसा हमसे कोई नहीं कह सकता कि हमें गुरुजी से कुछ नहीं मिला। बेटे, यह हमारा ईमान और हमारा भगवान है। कोई भी क्यों नहीं, जो कुछ उम्मीदें ले करके आया था उसने चाहे कुछ कहा हो या न कहा हो, हमने हर एक व्यक्ति की सहायता की है।
तपस्या की पूंजी से मिलते हैं आशीर्वाद। मित्रों,
सहायता देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको तप की पूंजी इकट्ठी करनी पड़ती है। इकट्ठी न करें तो हम कोई सहायता नहीं कर सकते।
गुरुजी,
आप जबान से कह दीजिए। बेटे, जबान से कहने से कोई फायदा नहीं हो सकता, जबान से कहने से कोई लाभ नहीं हो सकता।
उनको अपना पुण्य देना पड़ता है।
100 ग्राम जलेबी 1 रुपये की आती है। आपके पास पैसा हो तो आप अपने पास से खरीद लें,
न हो तो हमसे ले लेना, हम 1 रुपया दे देंगे, 100 ग्राम जलेबी खा लेना।
नहीं साहब, दुकानदार तो फोकट में देता है। बेटे, फोकट नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। आपकी हम सहायता करते हैं, इसके लिए हम अपना तप देते हैं, पुण्य देते हैं। तप और पुण्य अगर हम इकट्ठा न करें तो हम आपको कहाँ से देंगे।
रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया था क्योंकि उन्होंने अपने क्रेडिट बैलेंस का हिसाब नहीं रखा।
लोगों को क्या दे रहे हैं, हमारे पास जमा भी है कि नहीं?
जमा था नहीं, देते हुए चले गए।
फिर कहाँ से चुकता होगा? उनको नीलाम होना पड़ा और गले में कैंसर हो गया।
मित्रों, हमारे पास तप की पूंजी न हो और हम आपको आशीर्वाद दें, वरदान दें, तो वह या तो मिथ्या जाएगा या फिर हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
बेटे, कीमत चुकाने के लिए हमारा एक आदमी तप करता रहता है, निरंतर तप करता रहता है। 8 घंटे हम तप करते रहते हैं और तप करके हम जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से एक दाना, एक चप्पा, एक राय रत्ती अपने लिए बचाए रखने की अपेक्षा सब कुछ आपके लिए खर्च कर देते हैं। यह नहीं सोचते कि इससे हमारा भला हो जाएगा। आपका भला है तो यही हमारे लिए भला है, आपकी खुशी है तो यही हमारी खुशी है,
आपकी उन्नति है तो यही हमारी उन्नति है।
बेटे, हमारा एक आदमी उसी शोध कार्य में लगा रहता है जहाँ देवात्माएं रहती हैं। हमारा एक आदमी देवात्माओं के पास ही रहता है, हिमालय में ही रहता है, वहीं उसकी बातचीत चलती रहती है, वहीं उसकी चर्चाएं चलती रहती हैं।
गुरुदेव ने बुलाया भी था।
हमारा एक आदमी लगातार वहीं रहता है, वहीं तप करता रहता है, वहीं उनका देख घटाव रेख में तप करता रहता है, शक्ति इकट्ठा करता रहता है, अनुसंधान करता रहता है, सारे काम हम 5 होकर करते रहते हैं। हम आपके पास भी बैठे हैं और 5 आदमी होकर अलग अलग क्षेत्र में काम भी करते रहते हैं।
मित्रों, विक्रमादित्य के पास 5 वीर थे, अलाउद्दीन के पास जिन थे, सुकरात के पास डेविल थे, दैत्य थे।
हमारे पास भी हैं और उन 5ों के लेबर को मिला करके, 5 पांडवों का श्रम मिला करके, जिस तरीके से एक श्रम बनता था पांडवों का, ऐसे ही हमारे 5 व्यक्तित्वों को मिला करके हम जिंदगी जीते हैं।
350 वर्ष की जिंदगी हमने जी ली।
कैसे जिंदगी जी ली?
गायत्री मंत्र ने कहा था, गायत्री साधक दीर्घजीवी होता है,
और हम दीर्घजीवी हैं।
70 वर्ष के होते हुए भी हमने 350 वर्ष जी लिया।
हमने इतना काम कर लिया जितना कि 350 वर्ष जिंदा रह करके हम कर सकते थे।
इसलिए हमारी आयु 70 साल नहीं है, वरन 350 साल है। प्राण का अर्थ हिम्मत, आयु के बाद आता है प्राण।
प्राण किसे कहते हैं? प्राण हिम्मत को कहते हैं। आप में हिम्मत है बेटे, हमारे अंदर बहुत हिम्मत है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम जमाने की बहती हुई हवाओं को चुनौती देते हैं और यह कहते हैं कि हम आपको लौटा देंगे और हम आपको पलक देंगे। जहाजों को पलक दे जो, उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से हम टक्कर मारते हैं।
अवांछनीयता के विरुद्ध, अनैतिकता के विरुद्ध, मूलमान्यताओं के विरुद्ध हम खड़े हो जाते हैं।
आप देखते नहीं है कि दुनिया में चारों ओर से इनकी कितनी तेज धाराएं बहती हुई चली आती हैं और हम अपनी सींग पैनी करके खड़े हो जाते हैं और यह कहते हैं कि हम आपको पलक देंगे। किससे पलक देंगे बेटे? हमारे पास बड़ी हिम्मत है।
टिटहरी के पास हिम्मत थी और जो सीना खोलकर खड़ी हो गई थी कि हम समुद्र को सुखा कर रहेंगे। उसकी छोटी सी हस्ती समुद्र को तो नहीं सुखा सकी, पर महर्षि अगस्त्य की सहायता से सुखा लिया और अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। बेटे, हम टिटहरी की जरूरत, टिटहरी की ताकत, टिटहरी का मनोबल, टिटहरी के प्राण को समझते हैं। साथियों, प्राण कहते हैं हिम्मत को।
गायत्री मंत्र आयु और प्राण देता है और हमको प्राण मिला हुआ है। हमने जिंदगी भर अन्याय से, अवांछनीयता से, मूढ़ मान्यताओं से, कुरीतियों से लोहा लिया है और जब तक हम जिंदा रहेंगे लोहा लेते रहेंगे। परशुराम के तरीके से हम कुल्हाड़ा अपने सिर पर रखकर चलते हैं। द्रोणाचार्य के तरीके से हम एक हाथ में वेद और एक हाथ में धनुष बाण लेकर चलते हैं। हाथ में वेद लेकर चलते हैं हम, बड़ी हिम्मत से चलते हैं। यह गायत्री मंत्र का प्राण है।
गायत्री मंत्र का आयु प्राण के बाद तीसरा अनुदान वरदान है प्रजाम।
संतानें बेटे हमारी बहुत हैं। इतनी संतानें हैं कि कुछ पता नहीं चलता। कभी मालूम पड़ता है कि 5 लाख हैं, कभी अंदाजा लगाते हैं तो लगता है कि ये 50 लाख से कम नहीं है।
रावण के पास 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती अर्थात 2 लाख संतानें थी। और बेटे, हमारे पास 50 लाख आदमी हैं। सारे के सारे हिंदुस्तान से लेकर सारी दुनिया में हमारी संतानें फैली हुई हैं। आयुह प्राण प्रजाम कीर्तिम अर्थात चौथा है कीर्तिम। कीर्तिम बेटे हमारी हिंदुस्तान तक ही नहीं रही, हम हिंदुस्तान को पार कर गए।
सारे संसार भर के किसी विश्वविद्यालय में जाइए और यह मालूम कीजिए कि 2 काम किसने किए।
एक तो हिंदू धर्म का आरंभ से लेकर अंत तक प्राचीन काल के ऋषियों का अनुवाद किसने किया है। सारी दुनिया हमको जानती है। दुनिया का हर विश्वविद्यालय हमको जानता है कि आचार्य जी एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अध्यात्म को विज्ञान से मिला देने का अचंभा कर दिखाया है। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। मित्रों,
अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इन दोनों को हम मिलाते हैं। यह एक नई धारा है जो संसार के लिए अचंभा है। आप तो समझते नहीं हैं। आप तो केवल इतना ही समझते हैं कि गुरुजी पैर छूने और वरदान देने की मशीन है। रेलवे स्टेशन पर वजन तौलने की एक मशीन खड़ी होती है।
10 पैसे उसमें डालिए और खट से टिकट आ गई। पैर छुइए और 6 केले निकालिए। गले में माला पहनाए, मनोकामना पूरी करा ले जाइए, ये आचार्य जी हैं।
हाँ साहब, ये आचार्य जी हैं।
जैसा तू घटिया और निकम्मा आदमी है, वैसे ही मुझे भी तूने बना दिया।
मुझे भी तूने संतोषी माता बना दिया।
तू न अपना मूल्य जानता है और न अध्यात्म का मूल्य जानता है।
न हमारा मूल्य जानता है, न हमारे क्रिया कृत्य का मूल्य जानता है, न हमारे जीवन का उद्देश्य जानता है।
बेटे, हमारा यश बहुत बड़ा है।
हमारा यश जिंदा रहेगा।
कब तक जिंदा रहेगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारा यश जिंदा है और यह जिंदा रहेगा।
कार्ल मार्क्स, जिसने साम्यवाद बनाया, उसका यश जिंदा रहेगा। रूसो का यश जिंदा रहेगा, जिसने डेमोक्रेसी को जन्म दिया। बेटे, हमारा यश भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हमने संसार को विज्ञान और अध्यात्म की नई दिशाधारा दी है।
नए युग के लिए क्या विचारणा आनी चाहिए, यह हमने नए सिरे से दी है। बेटे, हम भी जिंदा रहेंगे और हमारा यश भी जिंदा रहेगा।
कीर्तिम के बाद आता है द्रविणम, अर्थात धन। बस महाराज जी,
आपकी यही बात ठीक है और सब बातें बेकार हैं। बेटे, हमारे पास गायत्री माता ने बहुत धन दिया है। कितना धन दिया है, अब सारी बातें तो आपको नहीं बताते, पर आप देख ली कि हम अपने जिन मकानों में रहते रहे हैं, उन मकानों की कीमत क्या है। जिन मकानों में आदमी रहेगा, सारा पैसा तो उन मकानों में लगता नहीं है।
कुछ और भी तो रखता है किसी कार्य व्यापार को, रहने को। अब आप देखिए, हमारी गायत्री तपोभूमि 10 लाख से बनी है।
यह शांतिकुंज 10 लाख से बना है और ब्रह्मवर्चस 10 लाख से बना है।
और यह गायत्री नगर।
गायत्री नगर तो बेटे सबसे ज्यादा में बना है। कितने दाम का बनेगा? इसमें 50 लाख भी लग जाया तो अचंभा मत मानना।
तो गुरुजी,
यह सब कहाँ से आता है? बेटे, हमारा गुरु दो बातें कह गया था। एक तो यह कि लोगों के सामने हाथ मत पसारना। अभी तक तो हमारी शर्म रह गई है और जब तक हम जिंदा हैं, तब तक शायद यह शर्म बनी रहेगी। हमने कभी किसी आदमी से नहीं कहा कि हमको पैसे की जरूरत है और हमको दे जाइए। बेटे, हमने कभी किसी से नहीं कहा। जुगल किशोर बिरला हमारे बहुत घने मित्रों में से थे।
जब दिल्ली से मथुरा आते थे तो टेलीफोन करवाते थे।
कहते थे कि आचार्य जी से पूछना, उनके पास टाइम है क्या।
जिस तारीख को मिलेंगे उसी तारीख को मैं आऊं।
एक दिन पूरे दिन हम बात करते थे।
पूरे 6-7 घंटे उन्हीं के साथ रहते थे।
बहुत सारी बातें करते थे।
एक बार उन्होंने यह पूछा कि आचार्य जी,
आपका यह काम कैसे चलता है? आप इतनी सारी संस्थाएं लिए बैठे हैं, उनका खर्च किससे चलता है? हमने कहा कि बिरला जी, आप यह बताइए कि इतने सारे आपके मिल चलते हैं, आपका काम कहाँ से चलता है? उन्होंने कहा कि हमारा तो इंतजाम भगवान से हो जाता है।
उसी भगवान से हमारी भी जान पहचान है।
हम अपना इंतजाम कर लेंगे। आप तो हमारी चिंता मत करना पैसों के बारे में, क्योंकि जो आपके इतने मिलों के कर्मचारियों के लिए दे सकता है, वह हमको भी दे सकता है। इस पर हमारा बड़ा विश्वास है। विश्वास ही नहीं है, हमारा तो दावा भी है और अधिकार भी है। आपका तो अधिकार भी नहीं है, हमारा तो अधिकार भी है।
इसलिए मित्रों,
कितना पैसा आ जाता है? हमारे पास बहुत पैसा है।
महाराज जी,
कितना है? बेटे, आपको यह बात बता देंगे तो आप इनकम टैक्स वालों के यहाँ रिपोर्ट कर देंगे।
छापा पड़ जाएगा।
बहुत पैसा है, बस इतना ही समझ जाइए।
पैसे की मत पूछिए। अब आता है आयु, प्राण, प्रजा, पशुम, कीर्तिम, द्रविण, ब्रह्मवर्चसम। 7वां वरदान गायत्री माता एक ही देती हैं और उसका नाम है ब्रह्मवर्चस।
ब्रह्मवर्चस कैसा है? वह ब्रह्मवर्चस जिसकी स्थापना कराने के लिए हम आपको ले जाते हैं, पूरा कराने के लिए आपको ले जाते हैं। यह वह ब्रह्मतेज है जो हम अपने भीतर पैदा करने के बाद, दीपक जलाने के बाद यह कोशिश करते हैं कि औरों के दीपक जलाएं।
ब्रह्मवर्चस गायत्री मंत्र का आखिरी वाला 7वां वरदान है।
यह 7वां वरदान जीवन के इन अंतिम दिनों में हमने प्राप्त कर लिया। इसे प्राप्त करने के बाद हम इसको दूसरों को देना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं।
इसलिए उद्घाटन शिविर में हमने आपको बुलाया है। गायत्री मंत्र 3 पैर वाली गायत्री है, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा। चरित्र, भावना और विचारणा। विचारणा, भावना और क्रिया।
सत्कर्म, सद्भाव और सद्ज्ञान।
इन तीनों का समन्वय अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको वरदान देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, और यह कहता हूँ कि आपको भी गायत्री मंत्र का इसी तरीके से लाभ मिल सकता है जैसे कि मुझे लाभ हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूँ।
ओम शांति।